नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नाट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, वर्डप्रेस वेब डिजाइन फॉर डमीज, लीजा साबिन विल्सन की व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, जो वर्डप्रेस को केवल ब्लॉग प्रकाशित करने के माध्यम के बजाय अनुकूलित वेबसाइट बनाने के मंच के रूप में प्रस्तुत करती है। इसका केंद्र स्व होस्टेड वर्डप्रेस साइट की डिजाइन और संरचना है, जिसमें HTML, CSS, PHP और MySQL जैसे पूरक कौशलों का उपयोग समझाया गया है। पुस्तक का उद्देश्य पाठक को तैयार थीम चुनने से आगे ले जाकर उसके लेआउट, टेम्पलेट, नेविगेशन, विजेट और सामग्री प्रदर्शन को समझने योग्य बनाना है। इसमें रंग, टाइपोग्राफी और पृष्ठ संरचना जैसे दृश्य निर्णयों को वर्डप्रेस की तकनीकी व्यवस्था से जोड़ा गया है। उदाहरणों, स्क्रीनशॉटों और कोड अंशों के माध्यम से यह बताती है कि किसी सामान्य थीम को किसी व्यवसाय, संगठन या व्यक्तिगत साइट की जरूरतों के अनुसार कैसे बदला जा सकता है। यह पूर्णतः शुरुआती पाठक के लिए बुनियादी परिचय नहीं, बल्कि उन वर्डप्रेस उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक उपयोगी है जो प्रशासन जानते हैं और डिजाइन तथा थीम अनुकूलन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, वर्डप्रेस को ब्लॉग से अनुकूलित वेबसाइट मंच में बदलने की दृष्टि। पुस्तक का मुख्य तर्क यह है कि वर्डप्रेस की उपयोगिता केवल लेख और ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित करने तक सीमित नहीं है। सही संरचना, थीम और टेम्पलेट व्यवस्था के साथ यह व्यवसाय, पोर्टफोलियो, संगठन या निजी उद्देश्य की विशिष्ट वेबसाइट का आधार बन सकता है। यह दृष्टि महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिजाइन कार्य को केवल सजावट मानने के बजाय सामग्री, पृष्ठों और उपयोगकर्ता के रास्ते को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया माना गया है। पाठक यह समझता है कि साइट का उद्देश्य तय किए बिना किसी थीम का चयन पर्याप्त नहीं होता। उदाहरण के लिए, पोर्टफोलियो साइट में दृश्य सामग्री और वर्गीकरण प्रमुख हो सकते हैं, जबकि सेवा आधारित साइट में स्पष्ट परिचय, संपर्क और सेवा पृष्ठों की प्राथमिकता होती है। पुस्तक तैयार वर्डप्रेस सुविधाओं और अनुकूलित कोड के बीच एक व्यावहारिक क्रम रखती है। पहले मौजूदा ढांचे, थीम और प्रशासनिक विकल्पों का उपयोग किया जाता है, फिर आवश्यकता होने पर HTML, CSS और PHP से बदलाव किए जाते हैं। इससे पाठक हर जरूरत के लिए शुरुआत से थीम बनाने की भूल से बच सकता है। यह ढांचा खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें वेबसाइट का अलग रूप चाहिए, पर जिन्हें हर तकनीकी परत को स्वयं विकसित करना आवश्यक नहीं है। दूसरा, थीम, टेम्पलेट और PHP संरचना को समझकर सुरक्षित अनुकूलन। थीम अनुकूलन पुस्तक का सबसे तकनीकी और उपयोगी भाग है। वर्डप्रेस थीम केवल रंगों और फॉन्ट का संग्रह नहीं, बल्कि टेम्पलेट फाइलों, सामग्री प्रदर्शन नियमों और पुनः प्रयोग योग्य हिस्सों की एक व्यवस्था है। पुस्तक थीम और टेम्पलेट को अलग करके समझने में सहायता करती है, जिससे पाठक जान सके कि हेडर, साइडबार, फुटर, एकल पोस्ट, पृष्ठ और संग्रह जैसे अलग दृश्य किन फाइलों या निर्देशों से बनते हैं। टेम्पलेट टैग और विजेट क्षेत्र इस व्यवस्था को अधिक लचीला बनाते हैं। इनके माध्यम से साइट का मालिक प्रशासनिक पैनल से कुछ सामग्री बदल सकता है, जबकि डेवलपर आवश्यक दृश्य नियम कोड में बनाए रखता है। पुस्तक के उदाहरण उस समय की 2013 थीम पर आधारित है, इसलिए उसके नाम और रूप आज पुराने लग सकते हैं। फिर भी थीम की फाइल आधारित सोच, टेम्पलेट पदानुक्रम और CSS द्वारा प्रस्तुति बदलने के मूल सिद्धांत उपयोगी बने रहते हैं। पाठक के लिए व्यावहारिक सीख यह है कि बदलाव करने से पहले यह पहचानना जरूरी है कि वह सामग्री, सेटिंग, स्टाइल शीट या टेम्पलेट स्तर का परिवर्तन है। यह भेद अनावश्यक कोडिंग, टूडे लेआउट और भविष्य के रखरखाव की समस्याओं को कम करता है। तीसरा, नेविगेशन, लेआउट। रंग और टाइपोग्राफी को उपयोगकर्ता अनुभव से जोड़ना वेब डिजाइन के दृश्य पहलुओं को पुस्तक तकनीकी वर्डप्रेस कार्य से अलग नहीं रखती। प्रभावी नेविगेशन, उपयुक्त रंग योजना, पठनीय फॉन्ट और सही लेआउट को साइट के उद्देश्य तथा उपयोगकर्ता के निर्णयों से जोड़ा गया है। इसका अर्थ है कि मेनू में हर उपलब्ध पृष्ठ भर देना अच्छा नेविगेशन नहीं है। उपयोगकर्ता को यह शीघ्र समझ आना चाहिए कि साइट किस बारे में है, मुख्य जानकारी कहाँ है और अगला उपयोगी कदम क्या है। इसी तरह रंगों का चुनाव केवल आकर्षण के लिए नहीं होता, क्योंकि रंग पहचान, दृश्य प्राथमिकता और पठनीयता को प्रभावित करते हैं। टाइपोग्राफी में फॉन्ट का चुनाव, आकार और रिक्त स्थान सामग्री पढ़ने की सहजता बदलते हैं। वर्डप्रेस थीम इन निर्णयों को लागू करने का ढांचा देती है, पर थीम का डेमो किसी वास्तविक साइट की सूचना व्यवस्था का विकल्प नहीं होता। पुस्तक पाठक को यह देखने के लिए प्रेरित करती है कि क्या चुना गया लेआउट सामग्री की प्रकृति से मेल खाता है। कई वेबसाइटों में साइड बार उपयोगी होता है, लेकिन हर पृष्ठ पर उसका होना आवश्यक नहीं। इस प्रकार डिजाइन को एक स्थिर रूप नहीं, बल्कि सामग्री, प्राथमिकताओं और तकनीकी सीमाओं के बीच संतुलन के रूप में रखा गया है। चौथा, मौजूदा फ्री और प्रीमियम थीमों का मूल्यांकन तथा बदलाव की सीमा। पुस्तक यह व्यावहारिक विकल्प देती है कि हर वेबसाइट के लिए शून्य से थीम बनाना जरूरी नहीं है। उपलब्ध फ्री या प्रीमियम थीम किसी परियोजना की शुरुआत तेज कर सकती है, बशर्ते उनका चयन साइट की वास्तविक जरूरत के अनुसार हो। इसका लाभ समय की बचत है, क्योंकि उत्तरदायी लेआउट, सामान्य टेम्पलेट और बुनियादी विकल्प पहले से मौजूद हो सकते हैं। पर पुस्तक का व्यापक संदेश यह भी है कि थीम चुनना केवल आकर्षक स्क्रीनशॉट देखने का निर्णय नहीं है, पाठक को नेविगेशन की क्षमता, विजय क्षेत्र, पृष्ठ संरचना, रंग और टाइपोग्राफी बदलने की सुविधा तथा आवश्यक सामग्री प्रकारों के अनुकूलता पर विचार करना चाहिए। इसके बाद CSS से छोटे दृश्य परिवर्तन और PHP टेम्पलेटों से अधिक संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। यह क्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल कुछ रंग बदलकर ऐसी थीम को उचित नहीं बनाया जा सकता जिसका मूल लेआउट या सामग्री ढांचा परियोजना से मेल नहीं खाता। इसी तरह अत्यधिक परिवर्तन भविष्य के अपडेट और रखरखाव को कठिन बना सकते हैं। पुस्तक पाठक को तैयार डिजाइन को अपनाने और उसे नियंत्रित ढंग से बदलने के बीच संतुलन सिखाती है। आधुनिक वर्डप्रेस में थीम तकनीक बदल चुकी है, फिर भी आवश्यकता आधारित चयन और सीमित समझदारीपूर्ण अनुकूलन का यह सिद्धांत प्रासंगिक है। अंत में प्लगइन, प्रशासन और केस स्टडी के माध्यम से कार्यशील साइट बनाना पुस्तक डिजाइन को केवल फ्रंट एंड की समस्या नहीं मानती। एक कार्यशील वर्डप्रेस साइट के लिए स्थापना, प्रशासन, प्लगइन प्रबंधन और सामग्री प्रदर्शन की समझ भी जरूरी है। प्लगइन वर्डप्रेस की क्षमता बढ़ाते हैं, लेकिन उनका चुनाव साइट के लक्ष्य से होना चाहिए, न कि केवल उपलब्ध विकल्पों की संख्या से। पुस्तक में प्लगइन सुझाव दिए गए हैं और प्रशासनिक उपयोग पर चर्चा है, जो पाठक को यह समझने में मदद करती है कि सामान्य कार्यों के लिए हर बार कस्टम कोड जरूरी नहीं। फिर भी इसके पुराने संस्करणों में दिए कुछ विशिष्ट प्लगइन सुझाव आज की जरूरतों या उपलब्धता के अनुसार पुराने हो सकते हैं, इसलिए इसका सबसे स्थायी पाठ चयन की प्रक्रिया है, किसी सूची का यांत्रिक पालन नहीं। केस स्टडी का उपयोग भी इसी व्यावहारिक सोच को मजबूत करता है। वे दिखाती है कि अलग जरूरतों वाली साइटों में डिजाइन, संरचना और वर्डप्रेस सुविधाओं का मेल कैसे बनता है। पाठक को यह समझ मिलता है कि वेबसाइट निर्माण एक ही बार का दृश्य कार्य नहीं, बल्कि सामग्री, प्रशासन और रखरखाव से जुड़ी व्यवस्था है। इसीलिए पुस्तक की उपयोगिता उन पाठकों के लिए बढ़ जाती है जो साइट को बनाकर छोड़ना नहीं, बल्कि उसे बदलने और संचालित करने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं। निष्कर्ष में वर्डप्रेस वेब डिजाइन फॉर डमीज उन वर्डप्रेस उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें डैशबोर्ड, पोस्ट, पेज और सामान्य थीम उपयोग का बुनियादी अनुभव है, लेकिन जो अपनी साइट की संरचना और रूप पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं। छोटे व्यवसायों के लिए साइट बनाने वाले वेब डिजाइनर, फ्रीलांसर, पोर्टफोलियो तैयार करने वाले रचनात्मक पेशेवर और थीम अनुकूलन सीखने वाले प्रशासक इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह दृश्य डिजाइन के निर्णयों को वर्डप्रेस की वास्तविक तकनीकी संरचना से जोड़ती है। पाठक केवल रंग या फॉन्ट बदलना नहीं, बल्कि नेविगेशन, लेआउट, टेम्पलेट, विजेट और सामग्री प्रदर्शन के संबंध को समझता है। समान श्रेणी की सामान्य वर्डप्रेस पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर डिजाइन केंद्रित दृष्टिकोण है। यह वर्डप्रेस के हर क्षेत्र का व्यापक लेकिन सही परिचय देने के बजाय वेबसाइट को अनुकूलित करने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान देती है। थीम और टेम्पलेट वाले अध्याय खास मूल्य रखते हैं, क्योंकि वे तैयार थीम के उपयोग और कस्टम विकास के बीच का रास्ता स्पष्ट करते हैं। फिर भी पाठक को समय संदर्भ ध्यान में रखना चाहिए। पुस्तक के उदाहरण 2013 थीम और कुछ प्लगइन संदर्भ आधुनिक वर्डप्रेस से पुराने हैं, अतः इसे नवीनतम ब्लॉक आधारित थीम विकास की मार्गदर्शिका नहीं, बल्कि वर्डप्रेस डिजाइन और पारंपरिक थीम अनुकूलन के मजबूत वैचारिक आधार के रूप में पढ़ना अधिक उचित है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं लीसा साबिन विल्सन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।